हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। नैना रेडी होकर विवान के साथ शूटिंग लोकेशन पर पहुंची, किंतु वहां मानस को देखकर वो अत्यधिक असहज महसूस कर रही थी। उस सुबह की घटना के बाद से वो मानस को बार बार नोटिस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो मानस दूर बैठे हुए भी उसकी ओर ही घूर रहा हो। विवान अब तक नैना का मित्र बन चुका था और नैना उसके साथ सहज भी थी, परंतु पता नहीं क्यों वो ये बात उसके साथ भी साझा नहीं कर पा रही थी। विवान ने फिर भी ये नोटिस कर लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है। सुबह मानस को नैना के कमरे में देखने के बाद से ही नैना का व्यवहार अजीब सा हो गया था। सुबह मानस का नैना के कमरे में होना अच्छा संकेत नहीं था। एक ही फिल्म में काम करने वाले कलाकार आमतौर पर ऐसी बातों से बचते हैं। वे निजी तौर पर किसी भी कलाकार के कमरे में नहीं आते जाते, क्योंकि किसी को नहीं पता कि पैपराजी कब, कहाँ और किस रूप में होगी। अगर उन्हें साथ में देख लिया गया तो बिना किसी बात के विवाद हो जाता है। परंतु मानस खुद ही सुबह नैना के कमरे में आया, जबकि नैना उस समय बाथरूम में थी। फिर भी वो उसके कमरे में ही रुक गया। विवान पहले से ही मानस को कुछ खास पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसने मानस के बारे में बहुत सी बातें सुनी थीं। लोग कहते थे कि वो अभिनेत्रियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता और कई अभिनेत्रियों को छोटी छोटी बातों पर फिल्म से भी निकलवा चुका है। विवान बहुत समझदार था और जानता था कि वे सारी बातें पूरी तरह सच नहीं हैं, लेकिन सारी बातें झूठ भी नहीं। लोग एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, परंतु एक बात तो सच होती ही है। इसके अलावा मानस के पिता निर्माता हैं, इसलिए उसे बड़ी बड़ी फिल्मों में मुख्य भूमिका आसानी से मिल जाती है, जबकि उसकी अभिनय क्षमता कुछ खास नहीं है। ये सब सोचते हुए विवान नैना के पास गया और उसे पानी की बोतल देते हुए कहा, ये लो पानी पी लो। तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो नैना, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत या फिर कोई और बात? नो नो, एवरीथिंग इज फाइन। कुछ नहीं, बस मुझे प्यास लगी थी। अच्छा हुआ तुम पानी की बोतल ले आए, लाओ मुझे दो। इतना कहते हुए नैना ने विवान के हाथ से पानी की बोतल ले ली और पानी पीने लगी। उसने विवान से और कुछ नहीं कहा, लेकिन जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और इस तरह इशारा किया जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन विवान इस बात को मानने को तैयार नहीं था और उसने अपनी तरफ से सब कुछ पता करने की ठान ली। शट शट, आदित्य को सोकर उठे हुए काफी समय हो गया था, लेकिन सुनैना अभी तक घर नहीं लौटी थी। उसने सुबह जो नोट पढ़ा था उसमें लिखा था, आदि मैं एक बहुत ही जरूरी काम से कहीं जा रही हूँ, मैं बस 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम नाश्ता करके अपनी सुबह की दवा ले लेना, मन करे तो ऑफिस भी चले जाना, लेकिन मुझे इतना ज्यादा मिस मत करना और अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर। वैसे मैं ये सब तुम्हें मैसेज कर देती, लेकिन मुझे पता है तुम अपना मोबाइल फोन चेक ही नहीं करते हो, तो कोई फायदा ही नहीं होता, इसलिए मैंने ये नोट लिखा। लव यू सो मच, तुम्हारी सोना। सुनैना का वो नोट पढ़कर सुबह सुबह आदित्य के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई थी, लेकिन फिर ये सोचकर वो थोड़ा परेशान भी हो गया कि आखिर सुनैना इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती है। लेकिन फिर उसने घड़ी देखी तो 10 बज रहे थे, इसलिए वो उठकर बैठ गया, क्योंकि 10 बजे इतनी सुबह नहीं होती। उसे लगा कि शायद वो अपने कॉलेज गई होगी, क्योंकि उसका अंतिम सेमेस्टर शुरू होने वाला था। इसके बाद आदित्य उठकर बाथरूम गया और स्नान करके तैयार होने के बाद वो नीचे डाइनिंग एरिया में आया। उसने देखा कि स्वीटी भी अपने संस्थान के लिए निकल रही थी। उसने स्वीटी से थोड़ी बहुत बातचीत की और फिर स्वीटी उसे अलविदा कहकर चली गई। फिर आदित्य ने नाश्ता किया और वो लगातार घड़ी की ओर देखते हुए सुनैना का इंतजार कर रहा था, लेकिन सुनैना के वापस आने का कोई नामो निशान नहीं था और अब 12 बज चुके थे। आदित्य ने वहीं हॉल में टहलते हुए अपने आप से कहा, ये 2 घंटे का बोल कर गई थी और अब तो 2.5 घंटे हो गए हैं, अब तक नहीं आई, कम से कम एक कॉल कर देती, और भले ही मैं मैसेज नहीं करता लेकिन कॉल तो रिसीव कर लेता हूँ ना, और वो भी सोना की तो जरूर रिसीव करूँगा। वैसे कोई अपनी भी देर नहीं हुई, और अगर बाहर जाओ तो टाइम तो लग ही जाता है, शायद मैं ही कुछ ज्यादा उसके बारे में सोच रहा हूँ और उसे इतना मिस भी कर रहा हूँ, क्या करूँ, आदत जो पड़ गई है उसकी। अच्छा ठीक है, मैं ही कॉल करके पूछ लेता हूँ कि कितनी देर में आएगी, तो फिर ठीक रहेगा। इतना कहते हुए आदित्य ने अपना मोबाइल फोन उठाया, लेकिन वो किसी का नंबर डायल कर पाता उससे पहले एक इनकमिंग कॉल आई। आदित्य को लगा कि सुनैना का फोन होगा, लेकिन फिर उसने देखा तो रवि का फोन था। ये देखकर वो थोड़ा मायूस हो गया और उसका कॉल रिसीव करने का भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसने रवि की कॉल रिसीव कर ली और बोला, क्या है रवि? देखो, कोई भी काम हो तो तुम खुद ही देख लो, या फिर ज्यादा जरूरी हो तो यहाँ घर आ जाओ, क्योंकि मैं आज ऑफिस नहीं आने वाला।
अरे सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। वो इन्वेस्टर सुनैना मैडम का इंटरव्यू देखने के बाद उनसे निजी तौर पर मिलने के लिए आए हुए हैं, लेकिन मैंने बोल दिया कि वो आज यहाँ नहीं है, तो उन्होंने बोला कि किसी से भी मिलवा दो, अगर तुम्हारी मैडम नहीं आ सकती तो फिर कोई और ही सही, इसलिए आप यहाँ पर आइए, नहीं तो फिर ये डील वो राठौर होटल्स को मिल जाएगी, और आपको तो पता ही है ना, उनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है आजकल।
रवि एकदम परेशान होते हुए अपनी पूरी बात बताई तो आदित्य ने उसकी बात ध्यान से सुनी। राठौर होटल इंडस्ट्रीज का नाम आते ही आदित्य के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वो अब तक जहाँ इस बात को लापरवाही से ले रहा था, अब वो थोड़ा गंभीर हो गया और थोड़ा सोचते हुए बोला, वैसे अगर वे लोग हमारे साथ डील नहीं करते हैं तो इसमें उनका नुकसान होगा, हमारा नहीं, इसलिए उनसे बोलो कि मैं उनके हिसाब से उनसे मिलने नहीं आ सकता, इसलिए अगर वे मुझसे मिलना चाहते हैं तो कल आएं या फिर कुछ घंटों तक प्रतीक्षा करें, इतनी बात करो और फिर उनका जवाब मुझे बताओ कॉल करके।
लेकिन सर, वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, ऐसे में मैं उन्हें जाने के लिए और फिर कल दोबारा आने के लिए बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इट्स वेरी अनप्रोफेशनल,
रवि थोड़ा परेशान होते हुए बोला। देखो, अनप्रोफेशनल या फिर प्रोफेशनल की बात मत करो, क्योंकि वे लोग भी तो बिना बताए ही यहाँ पर आ गए, ये कौन सा बहुत प्रोफेशनल है, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो।
बट सर, अगर ये डील हमारे हाथ से चली गई तो हमारा लॉस,
रवि फिर थोड़ी चिंता करते हुए बोला। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले आदित्य बीच में उसकी बात काटते हुए बोल पड़ा, रवि देखो, तुम याद रखा करो कि तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो, मेरे बॉस नहीं, और वैसे भी मेरी कंपनी है, अगर लॉस होता भी है फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह दे दूंगा, इसलिए जितना कह रहा हूँ चुपचाप से उतना करो।
इस बार आदित्य ने थोड़ी तेज आवाज में आदेश देते हुए कहा तो रवि ने ओके सर कहते हुए जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, क्योंकि वो आदित्य से और डांट नहीं खाना चाहता था।
राठौर इंडस्ट्रीज पिछले कुछ महीनों में ही सामने आई है और उसने सीधे आदित्य की सिंगानिया इंडस्ट्री से प्रतिस्पर्धा कर ली है। वे उन सभी निवेशकों को अपनी ओर खींचने में लगी रहती है और आदित्य को इन सब के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन फिर भी वो अपने होटल की प्रतिष्ठा जानता है। अभी भी उनकी होटल इंडस्ट्री ही पूरे शहर में और राज्य में भी नंबर वन है, इसलिए वो उसी छवि को बनाए रखते हुए सभी से डील करता है और सब कुछ अपने हिसाब से ही करना पसंद करता है।
थोड़े बहुत लाभ के लिए वो सामने वाले की सारी बातें और शर्तें कभी नहीं मानता, इसलिए उसने अभी रवि से ऐसा करने को कहा, जबकि कहीं न कहीं परिणाम उसे पता ही है कि अगर वो उन लोगों से तुरंत नहीं मिला तो वे जरूर डील रद्द कर देंगे या फिर उसकी कंपनी में निवेश नहीं करेंगे। आदित्य इस बारे में सोच ही रहा था और अभी सुनैना की ओर से उसका ध्यान हट गया है। दूसरी ओर सुनैना एक 5 सितारा होटल के कमरे में थी और उसके सामने विराज खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। सुनैना थोड़े गुस्से में लग रही थी और उसने कहा, विराज तुम ये सब क्या बोल रहे हो, तुम्हें तो सब कुछ पहले से ही अच्छी तरह पता है, मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति है, मैं तुम्हें पहले ही साफ मना कर चुकी हूँ और तुमने वो बात काफी अच्छी तरह से स्वीकार भी कर ली थी, तो फिर तुम क्यों अब ये सब। इसके साथ ही मुझे ये भी पता है सुनैना कि वो शादी बिल्कुल भी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई, और ये तस्वीरें जब मैंने देखी तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हुई, वो तुम्हारा पति तो तुम्हें छोड़कर भी चला गया, फिर भी तुम बार बार उसका ही नाम ले रही हो, मुझे पता है तुम दोनों के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, तो फिर तुम उसे क्यों नहीं छोड़ देती, मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, विराज उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, लेकिन अब उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। सुनैना ने पीछे हटते हुए कहा, विराज तुमने तो पहले बात मुझे झूठ बोलकर यहाँ बुलाया, तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझे आदित्य से संबंधित कुछ बताना चाहते हो जो कि मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ आई, लेकिन अब तुम ये सब बकवास कर रहे हो और मुझे तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर सुनैना उस कमरे के दरवाजे की ओर मुड़ी, लेकिन तभी पीछे से विराज की एकदम गंभीर आवाज आई, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, मैं सच में तुम्हें तुम्हारे पति के बारे में ही बताना चाहता हूँ, वो बात जो शादी के इतने समय बाद भी उसने अब तक तुमसे नहीं बताई होगी, और बताना क्या, मैं सीधा मिलवा ही देता हूँ, उसकी माँ से मिलोगी तुम। उसने आज तक तुम्हें नहीं बताया होगा ना इस बारे में। क्या बकवास कर रहे हो तुम विराज? आदित्य की माँ तो इतना कहते हुए सुनैना थोड़े गुस्से में पीछे मुड़ी, क्योंकि उसे लगा कि विराज उसे रोकने के लिए ऐसे ही कुछ बोल रहा है। लेकिन उसकी ओर देखकर सुनैना ने नोटिस किया कि इस वक्त विराज एकदम गंभीर है और साथ ही वो ना में अपना सिर हिला रहा है। उसे इस तरह देखकर सुनैना एकदम चुप हो गई और इस बारे में ही सोचने लगी। क्रमशः